अगर हम सोचें कि किसी इंसान की जिंदगी में सब कुछ एकदम सही चल रहा हो, अपार धन, सत्ता और समाज में बहुत गहरा सम्मान मौजूद हो,
और फिर
अचानक एक झटके में वो सब छिन जाए।
बिल्कुल, एक झटके में सब खत्म,
और उसे उसके ही घर से निकालकर एक बहुत ही भयानक, अनजान और खतरों से भरे जंगल में फेंक दिया जाए, तो दुनिया की नजरों में तो ये मतलब एक बहुत बड़ी त्रासदी है ना, एक भयानक सजा है।
हाँ, सही बात है।
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई सजा ना होकर एक बेहद कठोर, क्या कहते हैं उसे, एक बूट कैंप या मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का हिस्सा हो?
अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है।
मतलब एक ऐसी जगह जहाँ परिस्थितियाँ किसी इंसान को उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रही हो।
हाँ, और ये नजरिया जो है ना, महाभारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जब इंसान आराम और सत्ता में होता है तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाता।
बिल्कुल नहीं देख पाता।
विपत्ति वो आग है जो इंसान के भीतर जमे हुए अहंकार और भ्रम को जलाकर राख कर देती है। और जब हम महाभारत के सबसे लंबे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से वन पर्व, जिसे अरण्य पर्व भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं, तो ये बात पूरी तरह से सच साबित होती है।
और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय यही है। हमारा मिशन ये समझना है कि ये जो वन पर्व है ना, ये केवल कुछ हारे हुए राजाओं के जंगल में भटकने का घटनाक्रम नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
बल्कि जो हमें अलग अलग विश्लेषण और वृत्तांत मिलते हैं उनसे ये साफ होता है कि ये विपत्ति में धैर्य, मनोवैज्ञानिक संतुलन और खुद को बचाए रखने के सबसे बड़े पाठों का एक संग्रह है। अच्छा, संदर्भ के लिए अगर बात करें तो जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद जब पांडव जंगल में पहुंचे तो उनकी मानसिक स्थिति उस वक्त क्या थी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ।
अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो वे गहरे अवसाद और भ्रम की स्थिति में थे।
डिप्रेशन में?
हाँ, एकदम डिप्रेशन में। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वो बहुत ही गहरे आत्मसंशय से गुजर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके एक गलत फैसले ने उनके पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया है।
बाप रे,
ये एक भयंकर मानसिक आघात था, मतलब एक गहरा ट्रॉमा। ऐसे में वन में जो ऋषि मुनि उनसे मिलने आते थे और जो कहानियां उन्हें सुनाते थे,
हाँ, जो इतनी सारी कहानियां हम सुनते हैं वन पर्व में,
बिल्कुल, वे केवल समय काटने के लिए नहीं थी, वे एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक उपचार का हिस्सा थी, एक थेरेपी थी वो।
ओहो।
युधिष्ठिर के मन में उठने वाले सवालों का जवाब देने और पांडवों को भविष्य के उस महायुद्ध के लिए तैयार करने के लिए जो अब टाला ही नहीं जा सकता था।
तो चलिए इन कहानियों की गहराइयों में थोड़ा उतरते हैं। आपने कहा कि युधिष्ठिर उस समय अत्यधिक आत्मदया, मतलब सेल्फ पिटी से भरे हुए थे।
हाँ।
उन्हें लग रहा था कि पूरी पृथ्वी पर उनसे अधिक दुर्भाग्यशाली इंसान कोई दूसरा है ही नहीं, तो उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए ऋषि बृहदेश्वर राजा नल और दमयंती की कथा सुनाते हैं।
बिल्कुल, नल दमयंती की कहानी।
लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती, अगर कोई इंसान जुए में अपना राज्य हारकर डिप्रेशन में बैठा है तो उसे एक ऐसे राजा की कहानी क्यों सुनाई जा रही है जो खुद जुए में अपना राज्य हार गया था?
हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है।
मतलब ये तो घाव पर नमक छिड़कने जैसा नहीं हो गया?
सत्ता से देखने पर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन यही तो इस कहानी का मास्टर स्ट्रोक था।
अच्छा, कैसे?
ये कहानी युधिष्ठिर के लिए ना एक आईने की तरह काम कर रही थी। नल ने भी पासे के खेल में अपना साम्राज्य खोया था। कथाओं में जो आता है उसके अनुसार नल कली के प्रभाव में आ गए थे।
कली मतलब कोई राक्षस?
यहाँ कली किसी बाहरी राक्षस से ज्यादा मानवीय कमजोरियों, भटकाव और किसी लत, मतलब एडिक्शन के सामने अपने विवेक के समर्पण का रूपक है।
समझ गया।
जब नल कली के प्रभाव में आए तो उन्होंने अपनी सोचने समझने की क्षमता खो दी, बिल्कुल युधिष्ठिर की तरह।
हाँ, युधिष्ठिर भी तो जुए की लत में सब हार गए थे, और हार के बाद की जो स्थिति है नल की, वो कितनी भयानक थी। मतलब दोनों पति पत्नी जंगल में भूखे भटक रहे हैं।
हाँ, बहुत ही दयनीय स्थिति।
एक जगह नल कुछ पक्षियों को पकड़ने के लिए अपना एकमात्र वस्त्र उन पर फेंकते हैं और वो पक्षी वे कपड़ा लेकर ही उड़ जाते हैं।
सोचिए,
मतलब इंसान की बेबसी की ये पराकाष्ठा है। और फिर आधी रात को नल अपनी पत्नी दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर उसे सोता हुआ जंगल में अकेला छोड़कर चले जाते हैं।
बिल्कुल, और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि ऋषि बृहदश्व युधिष्ठिर को ये बताना चाहते थे कि विपत्ति केवल राजा पर नहीं आती, उसकी पत्नी पर भी आती है। नल के चले जाने के बाद कहानी का पूरा फोकस दमयंती पर आ जाता है, और दमयंती केवल विलाप करने वाली, भाग्य को कोसने वाली एक असहाय स्त्री बनकर नहीं रह जाती।
यह बहुत ही सशक्त बिंदु है। मतलब जब सब कुछ छिन जाए तो इंसान क्या करे। दमयंती ने हार नहीं मानी।
बिल्कुल नहीं,
उसने सबसे पहले अपने बच्चों को सुरक्षित अपने मायके भिजवाने की व्यवस्था की।
हाँ, और फिर वो भयानक जंगल की चुनौतियों का सामना करते हुए राजा ऋतुपर्ण के राज्य तक पहुंचती है।
बाप रे, अकेले?
अकेले। और वो अपने पति को वापस पाने के लिए एक शानदार कूटनीतिक जाल बुनती है, एक झूठे स्वयंवर की घोषणा करवाती है ताकि नल वहां आने पर मजबूर हो जाएं।
क्या बात है, मतलब रणनीति देखिए।
बिल्कुल, दमयंती का ये अटूट विश्वास और उसकी रणनीति ही अंततः नल को कर्कोटक नाग के श्राप से मुक्त कराती है। तो युधिष्ठिर के लिए एक सीधा संदेश था। उन्हें ये बताया जा रहा था कि संकट में खुद को कोसने के बजाय अपनी पत्नी द्रौपदी की तरफ देखें,
जो उनके साथ समान रूप से कष्ट सह रही है।
हाँ, और रोने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें।
बहुत ही गहरी बात है यह। खैर, ये तो एक व्यक्ति और उसके परिवार की विपत्ति थी, लेकिन तब क्या हो जब संकट पूरी सृष्टि पर आ जाए।
प्रलय की बात कर रहे हैं आप?
हाँ, वन पर्व में आगे हमें एक बहुत बड़ा मतलब ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण मिलता है, कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, जब पांडवों की मुलाकात ऋषि मार्किंडे से होती है। हमारे स्रोतों के अनुसार ऋषि मार्किंडे ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने महान प्रलय को अपनी आंखों से देखा है।
बिल्कुल, और ये कहानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि जब इंसान अपने व्यक्तिगत दुखों में डूबा होता है ना, तो उसे अपनी पीड़ा सबसे बड़ी लगती है।
हाँ, वो तो है।
पांडवों को उस छोटी सोच से बाहर निकालकर समय और ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराना बहुत जरूरी था। मार्कंडे उन्हें प्रलय का दृश्य बताते हैं, कैसे पूरी पृथ्वी पर 12 साल का भयंकर सूखा पड़ा।
12 साल?
हाँ, सूरज की आग ने सब कुछ भस्म कर दिया और फिर इतनी भयानक वर्षा हुई कि पूरी सृष्टि एक अथाह जलराशि में डूब गई।
और उस अंतहीन पानी में मार्कंडे अकेले भटक रहे थे, तभी उन्हें एक वटवृक्ष के पत्ते पर एक मुस्कुराता हुआ दैवीय शिशु एंड मतलब बाल मुकुंद या नारायण दिखाई देता है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज बहुत खटकती है।
क्या?
मार्कंडे तो एक सिद्ध और ज्ञानी ऋषि थे ना, जो इंसान दुनिया का अंत देख चुका है, जिसे जीवन का सबसे बड़ा सच पता चल गया है, उसे उस समय अचानक एक बच्चे को देखकर अहंकार कैसे आ गया कि मैं इतना महान हूँ और मुझे इस शिशु की शरण लेनी पड़ रही है।
ये दर्शाता है कि मानव मन का अहंकार कितना सूक्ष्म और जिद्दी होता है।
अच्छा,
ज्ञान और सूचनाओं का अहंकार ना सबसे खतरनाक होता है। मार्कंडे को लगा कि उन्होंने समय और मृत्यु को जीत लिया है।
समझ रही है।
और उस अहंकार को तोड़ने का तरीका भी भगवान का बहुत ही प्रतीकात्मक था। वो दैवीय शिशु एक गहरी सांस खींचता है और मार्कंडे सीधे उसके पेट के अंदर खींच जाते हैं।
और वहाँ अंदर का दृश्य तो मतलब दिमाग हिला देने वाला है।
बिल्कुल, वहाँ वे पूरी पृथ्वी, नदियाँ, पहाड़, साम्राज्य और सारी सृष्टियाँ देखते हैं। सब कुछ उस बच्चे के पेट में पूरी तरह सुरक्षित है।
ओहो।
वे उस पेट के अंदर न जाने कितने युगों तक भटकते हैं, जिससे उन्हें अपनी शून्यता और ब्रह्मांड की विशालता का असली एहसास होता है। फिर वो बच्चा डकार लेता है और मार्कंडे बाहर आ जाते हैं।
इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि प्रलय का मतलब सिर्फ द एंड या सब कुछ खत्म हो जाना नहीं है।
एकदम सही पकड़े आप। ये विनाश के गर्भ में पल रहे सृजन की कहानी है।
क्या बात है।
शिशु के पेट में ब्रह्मांड का सुरक्षित लेना ये दर्शाता है कि सबसे बुरे दौर में, जब सब कुछ नष्ट होता हुआ दिखता है, तब भी मूल तत्व सुरक्षित रहता है,
जो एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहा होता है।
बिल्कुल, तो पांडवों के लिए ये एक स्पष्ट ब्रह्मांडीय संदेश था कि उनका वर्तमान विनाश उनका अंत नहीं है, वे एक नए युग के जन्म की पीड़ा से गुजर रहे हैं।
ब्रह्मांड की विशालता को समझने के बाद अगर हम वापस व्यक्तिगत शक्ति पर आए ना, तो भीम की कहानी बहुत दिलचस्प है।
हाँ, भीम और हनुमान का मिलन।
बिल्कुल, पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था और युद्ध से पहले उन्हें ये सिखाना जरूरी था कि शक्ति का असली अर्थ क्या है। तो द्रौपदी के लिए सौगंधिका कमल लेने जब भीम हिमालय के घने जंगलों में जाते हैं, तो उनका रास्ता एक वृद्ध वानर रोक लेता है।
हाँ, एक बूढ़ा बंदर।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, भीम का घमंड तोड़ने के लिए किसी विशाल दैत्य या किसी देवता का भी तो इस्तेमाल हो सकता था ना, एक बूढ़े थके हुए बंदर का ही चुनाव क्यों किया गया?
इसका कारण बहुत गहरा है। वो वानर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान थे। और अगर हम पौराणिक वंशावली को देखें तो हनुमान और भीम दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं।
हाँ, दोनों पवन पुत्र हैं।
लेकिन दोनों अलग अलग युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हनुमान त्रेता युग के प्रतीक हैं, जिन्होंने श्री राम की सेवा में अपनी असीम शक्ति लगा दी, लेकिन कभी एक पल के लिए भी अहंकार नहीं किया।
सही बात है।
दूसरी ओर भीम द्वापर युग के प्रतीक हैं, जिनकी शक्ति में अहंकार और अधिकार की भावना मिली हुई थी। तो हनुमान भीम को ये दिखाना चाहते थे कि बिना विनम्रता और धर्म के शारीरिक ताकत सिर्फ एक भ्रम है।
मतलब भीम अपने पूरे अहंकार में उस वानर से रास्ता छोड़ने को कहते हैं और हनुमान कहते हैं मैं बहुत बूढ़ा हूँ तो मेरी पूंछ हटाकर आगे निकल जाओ।
हाँ,
और भीम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पसीने से तर बतर हो जाते हैं, लेकिन उस बूढ़े वानर की पूंछ का एक इंच भी नहीं हिला पाते।
और वो पूंछ न हिला पाना केवल एक शारीरिक हार नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक हार थी।
गहरा अर्थ है इसका।
वो पूंछ धर्म और विनम्रता के वजन का प्रतीक थी। जब भीम का अहंकार पूरी तरह से टूटता है, तब हनुमान उन्हें अपना असली विराट रूप दिखाते हैं।
क्या दृश्य रहा होगा वो।
बिल्कुल, उनका उद्देश्य भीम को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति को सही दिशा में मोड़ना था। हनुमान ने भीम को आने वाले युद्ध के लिए आशीर्वाद दिया और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होने का वचन भी दिया।
यानी वन पर्व केवल पांडवों की परीक्षा नहीं ले रहा था, बल्कि उन्हें अंदर से मजबूत कर रहा था।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन ये परीक्षा केवल पांडवों तक सीमित नहीं थी ना। उनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे कर्ण, उनकी भी एक बहुत बड़ी नैतिक परीक्षा इसी दौरान होती है। जो विवरण हमें मिलते हैं वो इंसान की नैतिकता और उसके मनोवैज्ञानिक द्वंद की एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करते हैं।
ये प्रसंग महाभारत के सबसे विवादास्पद और प्रभावशाली हिस्सों में से एक है।
हाँ, कर्ण का दान।
बिल्कुल। पांडवों के वनवास का 12वां वर्ष समाप्त हो रहा था। देवराज इंद्र, जो अर्जुन के पिता हैं, एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आते हैं। उनका उद्देश्य कर्ण के जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल मांगना था, ताकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की जीत सुनिश्चित की जा सके।
लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है यार, वो ये है कि कर्ण को पहले से सब पता था।
हाँ, सूर्यदेव ने बता दिया था।
बिल्कुल, सूर्यदेव ने कर्ण को सपने में आकर स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर एक चाल चलने आ रहे हैं। सूर्यदेव ने साफ कहा था कि शरीर से जुड़े वे कवच और कुंडल ही कर्ण की अमरता की गारंटी है। फिर भी ये जानते हुए कि सामने खड़ा व्यक्ति उसे धोखा दे रहा है और इससे उसकी जान जा सकती है, कर्ण ने ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसने चाकू उठाया और अपने शरीर से वो कवच काटकर दे दिया।
सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
वही तो, क्या ये दानवीरता की महानता थी या अपनी जान गंवाने की एक बहुत बड़ी बेवकूफी?
इस कृत्य को समझने के लिए ना हमें कर्ण के मनोविज्ञान को समझना होगा। कर्ण ने अपना पूरा जीवन अपमान में बिताया था। उसे हर जगह सूत पुत्र या निम्न कुल का कहकर प्रताड़ित किया गया था। इस निरंतर अपमान ने उसके भीतर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र, मतलब एक डिफेंस मैकेनिज्म पैदा कर दिया था।
अच्छा।
जहां उसका यश और उसकी दानवीरता की छवि उसके अपने प्राणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी।
बाप रे।
वो इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अमर होना चाहता था जो किसी भी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता, चाहे वो कोई देवता ही क्यों ना हो।
क्या बात।
उसने अपने भौतिक कवच का सौदा अपनी अमर कीर्ति के उस अभेद्य कवच से कर लिया जिसे समय भी नष्ट नहीं कर सकता था।
लेकिन क्या इसमें कोई रणनीतिक सोच भी शामिल थी, मतलब कोई स्ट्रैटेजी, या ये सिर्फ भावनाओं में बह कर लिया गया फैसला था?
नहीं नहीं, यहाँ कर्ण की बुद्धिमत्ता भी दिखाई देती है। वो केवल एक भावुक दानी नहीं था, वो एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार भी था।
वो कैसे?
जब उसने कवच दान किया तो उसने इंद्र से कहा कि चूंकि उसने अपना सबसे बड़ा रक्षक खो दिया है, इसलिए इसके बदले में इंद्र को उसे अपनी अमोघ शक्ति देनी होगी।
ओहो, अमोघ शक्ति।
हाँ, यह एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो प्रयोग किए जाने पर किसी भी एक शत्रु का निश्चित वध कर सकता था।
मतलब अचूक अस्त्र।
बिल्कुल। कर्ण ने अपने बचाव के हथियार के बदले अर्जुन को मारने का एक अचूक साधन प्राप्त कर लिया था।
मतलब कर्ण ने मौत को निमंत्रण तो दिया, लेकिन अपनी शर्तों पर।
हाँ, सही कहा।
अब जहाँ कर्ण ने अपने यश के लिए अपने शरीर का हिस्सा दान कर दिया, वहीं बनपर्व की हमारी अंतिम प्रमुख कथा एक अलग ही स्तर की लड़ाई है।
सावित्री और सत्यवान की कथा।
बिल्कुल, ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं
बल्कि अपनी शुद्ध बुद्धिमत्ता, तर्कों और धर्म के बल पर सीधे मृत्यु के देवता से भिड़ जाती है।
और ये कथा दार्शनिक रूप से बहुत अद्भुत है। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री एक निर्वासित और अंधे राजा के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुनती है।
केवल एक वर्ष शेष है।
कोई भी सामान्य इंसान ये सुनकर अपना फैसला बदल लेता, लेकिन सावित्री अडिग रहती है। यहाँ एक शब्द आता है विवरणों में, त्रिरात्र व्रत। ये क्या है?
सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आने पर त्रिरात्र व्रत का पालन किया। यह 3 दिन और 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए एक ही स्थान पर खड़े होकर की जाने वाली अत्यंत कठोर तपस्या है।
बापरे, 3 दिन तक लगातार?
हाँ, इसका उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं था, बल्कि मृत्यु के देवता का सामना करने के लिए अपने भीतर एक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा, एक स्पिरिचुअल कैपिटल को इकट्ठा करना था।
और जब वो दिन आता है, सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, और स्वयं यमराज सत्यवान के प्राण, जिन्हें अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया है, वो लेने आते हैं। लेकिन सावित्री रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय यमराज के पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। मुझे तो यहाँ सावित्री ना किसी सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही चतुर वकील की तरह लग रही हैं, जो सीधे मृत्यु के न्यायाधीश से जिरह कर रही हैं।
हाँ, ये तुलना बहुत ही सटीक है। सावित्री ने यमराज से सीधे सत्यवान के प्राण नहीं मांगे।
अच्छा, तो क्या किया?
उसने यमराज के साथ धर्म, कर्म, मित्रता और कर्तव्य पर ऐसे गूढ़ संवाद किए कि यमराज को उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे लौटने के लिए कहना पड़ा। और हर बार जब यमराज उसे लौटने को कहते, तो बदले में एक वरदान देते। सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा।
वाह।
फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके।
और फिर आता है सावित्री का मास्टर स्ट्रोक।
बिल्कुल, अंतिम वरदान में सावित्री ने यमराज से कहा कि उसे अपने पति सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो।
क्या बात है।
यमराज ने प्रसन्नता में बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया।
और फंस गए।
हाँ, और जैसे ही उन्होंने ये कहा, वे सावित्री के तार्किक जाल में फंस गए। क्योंकि सत्यवान के बिना सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त हो सकते?
बिल्कुल नहीं हो सकते।
चूंकि यमराज का वरदान झूठा नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड के नियमों को दरकिनार करते हुए सत्यवान के प्राण लौटाने ही पड़े।
मतलब ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी?
बिल्कुल नहीं।
सावित्री ने अपनी शाब्दिक बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से अपने मायके और ससुराल दोनों परिवारों का भविष्य, सम्मान और राज्य वापस हासिल कर लिया।
उसने मौत के देवता को उनके ही बनाए कानूनों में फंसा दिया।
वन पर्व की इन सभी कथाओं में ना एक सूत्र समान है। जब सबसे गहरा संकट आया, तो किसी भी पात्र की बाहरी संपत्ति, उसकी सेना या उसकी राजशाही ने उसे नहीं बचाया।
हाँ, सही बात है।
जिस चीज ने उन्हें संकट से बाहर निकाला, वो थी उनकी आंतरिक शक्ति, उनका चरित्र और धर्म की उनकी समझ। इन सभी कथाओं का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है। मतलब नल दमयंती का संघर्ष, मार्कंडेय का वो ब्रह्मांडीय ज्ञान, हनुमान जी द्वारा भीम का घमंड तोड़ना, कर्ण का वो मनोवैज्ञानिक द्वंद और सावित्री का यमराज से बौद्धिक युद्ध, ये सब कोई साधारण वनवास नहीं था। ये एक भट्टी थी जिसमें तप कर इंसान फौलाद बनता है।
बिल्कुल, और यही कारण है कि वन पर्व को महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। शारीरिक युद्ध से पहले ये मनोवैज्ञानिक युद्ध और चरित्र के निर्माण का समय था।
लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद एक ऐसा विचार मन में आता है जो पूरी महाभारत को देखने का नजरिया ही बदल सकता है।
अच्छा, वो क्या?
हम हमेशा मानते हैं कि महाभारत का असली फैसला कुरुक्षेत्र के उस खूनी मैदान में उन 18 दिनों में हुआ था। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण के बाद ये विचार करने योग्य बात है कि क्या वास्तव में ऐसा है? या फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध तो केवल एक शारीरिक औपचारिकता मात्र था? क्या ऐसा नहीं लगता कि अहंकार का टूटना, विनम्रता का आना, जीवन मृत्यु के सत्य को समझना और धर्म के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना, ये सब तो वन पर्व के उन 12 सालों में ही हो चुका था।
बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है।
शायद महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध रणभूमि में हथियारों से नहीं, बल्कि एक घने जंगल की शांति में इंसानी मन के भीतर लड़ा और जीता जा चुका था।
बहुत गहरा विचार है ये।
इस नए दृष्टिकोण पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।